ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए यूपीआई भुगतान में निरंतर वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे यूपीआई से होने वाले भुगतान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और जो नवीनतम आंकड़े आए हैं इस बारे में, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन जी। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार अमरीश जी, आपको भी।
अनिल जी, जो हम नवीनतम आंकड़े दे रहे हैं यूपीआई के माध्यम से जो भुगतान हुआ है जुलाई के महीने में, उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी देखी गई है और लगातार तीन महीनों से मई जून जुलाई हर महीने इन आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखाई देती है। और अगर हम मात्रा की दृष्टि से देखें, जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी सौदे यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं, उनमें 45% की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। और अगर हम मूल्य की दृष्टि से भी देखें, इन सौदों में जो तेजी आई है वो वार्षिक आधार पर 35% से ज्यादा है, और लगातार तीन महीने से 20 खरब से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है, जो सौदे हैं, वो यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
अमरीश जी, दो तीन चीजें हैं। ये जो आपने आंकड़े रखे, ये एक तरीके से एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। पिछले महीने जुलाई के जो आंकड़े हैं वो 14.5 बिलियन, मतलब 14.5 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। और हमें ध्यान रखना है कि ये यूपीआई जो है 2016 में लॉन्च हुआ था, एंड आपको शायद याद होगा एक बड़ा सॉफ्ट लॉन्च था, मार्च में करीब हुआ था और फिर नवंबर तक ज्यादा इसमें गति प्राप्त नहीं हुआ। फिर डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो हुआ उसके बाद इसने जो तेजी पकड़ी, पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। जो आपने आंकड़े रखे, हर साल डबल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट क्या, अभी तो 45% इसकी ग्रोथ है। तो एक तो ये, दूसरा इसका जो एक्सेप्टेंस रहा है कि आप गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति यूपीआई यूज करता है, चाहे हम रेस्टोरेंट में खाने पे जाएं या सड़क किनारे गन्ने का रस पी रहे हो या छोटी सी दुकान में हो, हर जगह आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है इसमें जो कैश, पहले जो कैश में हम ट्रांजैक्शन करते थे, ये थोड़ा थोड़ा होता कम होते जा रहा है। अभी तक कैश है इकोनॉमी में, लेकिन जितना पहले था उतना नहीं है। तो आखिरी में यही है कि जब आप डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ते हैं, जो एक यूपीआई एक किस्म का डिजिटल करेंसी है, तो इसमें जो आर्थिक उपलब्धियां होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रोडक्टिविटी जो कहते हैं इकोनॉमी में बहुत बढ़ता है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत की जो आर्थिक रफ्तार है पिछले 4-5 सालों से, इसका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी के कारण है और इसमें यूपीआई का एक बहुत बड़ा रोल है।
जी, तो अनिल जी, जैसे आपने जिक्र किया कि नकदी का उपयोग कम हुआ है क्योंकि लोग यूपीआई की तरफ चले गए हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था में और रोजमर्रा के जो भी सौदे हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है, उसमें अगर नकदी का उपयोग कम हो रहा है, तो इसका किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है?
अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है प्रोडक्टिविटी पे। तो आप सोचिए कि निजी काम के लिए आप पहले एटीएम जाते थे, बैंक ब्रांच जाते थे, तो हमें 2-2 घंटे लग जाते थे अपने पैसे निकालने में। बाद में एटीएम आया तो हमें कुछ चंद मिनटों में पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब तो हम किसी भी वक्त कहीं पर भी यूपीआई के साथ हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। और इसकी उपलब्धि पाई कैसे हमने, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो नींव है ये आधार पर बना हुआ है। आधार जो हमारा 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, हर भारतीय के पास एक आधार नंबर है, तो इससे एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुआ। तो आप सोचिए 2009 में जब ये लॉन्च हुआ, उसके पहले आइडेंटिटी की कितनी समस्या होती थी। हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ता था, तो गरीबों की तो आइडेंटिटी की बात ही छोड़िए। तो अब आइडेंटिटी का जब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बैंक अकाउंट आए, बैंक अकाउंट के कारण जो यूपीआई जो अब हम सामने देख रहे हैं, तो इससे जो है एक इंक्लूजन भी हुआ। जो सिस्टम के बाहर थे अब अंदर है, जैसे कि आधार के बल पे और यूपीआई का जो इंडिया स्टैक है इसके बल पे आज जो बैंक अकाउंट बांटे गए, पिछले 10 साल में कुछ 40 करोड़ बैंक अकाउंट दिए गए हैं भारत सरकार के हेतु, और विशेषज्ञों का कहना है ये नॉर्मली एक देश को 70 साल लगते हैं इतनी उपलब्धि प्राप्त करने में, जो इतने कम समय में इतने सारे अकाउंट बांटे, ये हमारे इंडिया स्टैक जिसका एक उदाहरण यूपीआई है और उसका जो नींव है आधार है। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि इकोनॉमिक रफ्तार, जो रेट ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ग्रोथ है, इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आखिरी में मैं ये कहूंगा कि एक डिजिटल इकोनॉमी का एक हिस्सा है, और जितना देश डिजिटल इकोनॉमी को अपनाएगा उतनी ही जल्दी हमारी प्रगति की रफ्तार और बढ़ेगी।
लेकिन अनिल जी ये बताइए, जिस तरह से सौदे बढ़ रहे हैं डिजिटल तरीकों से, तो काफी खबरें कुछ डिजिटल फ्रॉड्स की भी आती हैं, तो अभी आपको क्या लगता है व्यवस्था में अभी किस तरह के और परिवर्तन या बदलाव की जरूरत है, जिससे ये जो भी कुछ गलत तरीके हैं या गलत तरीके से लोग धोखा दे देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, उस पर थोड़ी रोकथाम लग सके?
अमरीश जी, उसका तो एक ही उपाय है, वो जितना आप साइबर सिक्योरिटी बढ़ाओगे उतना कम रिस्क रहता है। अभी हाल में ही पिछले एक हफ्ते में ही एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर अटैक हुआ था किसी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही। तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, इससे बचना आसान नहीं है। इसमें अब यही है कि जो हम कहते हैं ना हाइजीन, जो हमारे ट्रांजैक्शन हम कंज्यूमर लेवल पे, ये हमें भी होशियार रहना पड़ेगा, जैसे पासवर्ड बदलते रहें और देखें कि कहां हम यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कहीं ओपन वाईफाई पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अपने लेवल पे भी हमें सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जितना सिस्टम साइबर सिक्योर रहेगा उससे ही इसका रिस्क कम होगा। लेकिन इससे कभी एक पूरा छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज आप सोचिए ये तो एक पेशा है चोरी, मतलब एक प्रोफेशन है, भारत में नहीं दुनिया भर में ये गैंग फैले हुए हैं, और ये तो विदेश, कुछ देश तो इसको हथियार जैसे अपनाते हैं, तो इससे तो ये जंग जारी रहेगा। बस हमें होशियार रहना पड़ेगा कंज्यूमर लेवल पे, सरकार लेवल पे और कंपनी लेवल पे।
अनिल जी, ये जो पूरी भुगतान की प्रणाली है यूपीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये संचालित करता है, तो इसकी भूमिका के बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें।
ये एनपीसीआई जो है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये 50% जो है बैंकों का है ओन्ड, और बाकी 50% रिजर्व बैंक का है। तो ये सरकारी नहीं है, मतलब सेमी सरकारी है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये इनोवेशन प्रो इनोवेशन है, मतलब जितने भी हम उपलब्धियां देख रहे हैं यूपीआई से शुरू करके, और यूपीआई पे जो अलग अलग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं रोजाना, जैसे इंडिया स्टैक पे यूपीआई का ढांचा, जैसे मैंने पहले समझाया इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक पे हमने कोविन चलाया जिसपे 2 बिलियन वैक्सीन बांटे गए एनी टाइम एनी प्लेस एनी वेयर इन इंडिया, मतलब ये दुनिया में इतनी खूबी से कभी नहीं बांट पाए। तो ये सारा एनपीसीआई ने ही किया है। तो एनपीसीआई जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन भारत का एक प्रतीक बन गया है, जैसे इसरो एक तरीके से बना है, वैसे ही एक एनपीसीआई है। तो इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और भारत की आर्थिक प्रगति में इनका बहुत बड़ा हाथ है।
अनिल जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग छोटे छोटे चीजें खरीदने के लिए, चाहे वो 20 रुपए हो, 30 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक सीमा भी निर्धारित है। तो प्रतिदिन की कितनी सीमा है हम ये जानना चाहते हैं, और प्रति ट्रांजेक्शन, प्रति लेन देन की कितनी सीमा है इसके ऊपर?
एक तो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और दूसरा जो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, हम जो भी ट्रांजैक्शन, कुछ 20 बिलियन रुपए हैं इसके पिछले महीने के ट्रांजैक्शन, तो आप उसमें ना आप देखेंगे 70% 500 रुपए और 200 रुपए के बीच में है। तो आप सोचिए कौन कर रहा होगा ट्रांजैक्शन, आम लोग ही कर रहे हैं। तो इसमें जितना आम लोगों को फायदा हुआ है, और ये आम लोगों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम पहले भी आपको बोल चुके हैं, जो ये सिस्टम में आ गए, इनकी बड़े बड़े फायदे हुए हैं। तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन छोटे रकम के हैं, बड़े रकम के नहीं है। तो लिमिट्स अपने पे निर्भर होता है, जैसे कुछ लोग 2000 पे रखते हैं, अपने लिमिट पे होता है, तो बैंक और अपने आप पे निर्भर होता है।
अनिल जी, जैसे आप इनोवेशन की बात कर रहे थे, एक नए नए तरीकों को अपनाने की बात कर रहे, तो जो पूरी तकनीकी आधार पे कहें, जो पूरी प्रणाली है, जैसे फिनटेक सॉल्यूशंस की जो हम बात करते हैं, उसमें लगातार नई नई चीजें जोड़ी जा रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में अभी और किस तरह की इनोवेशन की गुंजाइश है, और अभी क्या क्या नई चीजें हम यूपीआई के अंदर ही जोड़ पाएंगे?
यूपीआई जो है, जिससे मैं पहले भी समझाया आपको, इंडिया स्टैक पे बेस्ड है और इंडिया स्टैक जो है एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारत की एक उपलब्धि है। भारत ने ये इनोवेशन किया, आज दुनिया भर में इसको अपनाया गया। G20 जो पिछले साल भारत में हुआ ग्लोबल मीट, तो वहां पे इसको एक अपनाया गया ग्लोबल स्टैंडर्ड पे। तो इसकी खूबी ये है डीपीआई की, ये पब्लिक डिजिटल रेल्स है, इसमें प्राइवेट कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों का जो पर्सनल डेटा इसमें है, लेकिन सुरक्षित है। अब इस पे जो भी कोई इनोवेशन करना चाहता है, जैसे यूपीआई एक तरीके का एक इनोवेशन है। अब यूपीआई में ही एक नया इनोवेशन ला रहे हैं, वो है यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से जोड़ना। तो क्रेडिट कार्ड, आप सोचिए, देश में 4 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है या 4 करोड़ क्रेडिट कार्ड है। जैसे ही आप यूपीआई से जोड़ोगे, इसको आप दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, क्योंकि यूपीआई का जो बेस है इससे कई गुना ज्यादा है। इनोवेशन जो है हजारों हो सकते हैं। जैसे आपने बोला फिनटेक, भारत में कुछ 10,000 या 15,000 स्टार्टअप हैं इस वक्त, उसमें से करीब 1/4 फिनटेक है। तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है फिनटेक है, प्योर प्लेन फिनटेक जो कहते हैं। बाकी जो है, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी हो, कुछ भी हो, वो भी उसमें फिनटेक जोड़ते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन में ही मुनाफा है, उसमें कमीशन है, उसमें इनको फायदा होता है। अभी तक हमने जो देखे इनोवेशन, ये कुछ भी नहीं है, आगे में और बढ़ता जाएगा। जो कहते हैं एम्बेडेड फाइनेंस, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम खरीदना हो, स्कूल में फीस डालना हो, किसी भी तरह के, तो एम्बेडेड फाइनेंस, जो क्रेडिट कार्ड लिंकेज, जो यूपीआई, ऐसे ऐसे 2-3 में उदाहरण दे रहा हूं, बट ऐसे करोड़ों उदाहरण है। अभी हमने शुरुआत ही देखा है, इसको आप चलते चलते देखिए ये किस तरीके से उभरेगा।
अनिल जी, जो हमारे सामान्य रोजमर्रा की चीजें खरीदने वाले लोग हैं, उनके पास फोन तो अब ज्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंटरनेट सबके पास नहीं होता, या कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती, खासतौर से सुदूर के इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा सुचारू ढंग से नहीं है, ऐसी स्थिति में वो यूपीआई का किस तरह से इस्तेमाल ठीक से कर सकता है?
इस पे भी एनपीसीआई ने इनोवेशन किया है। फीचर फोन जो है, चाहे आपके पास स्मार्टफोन ना हो, फीचर फोन हो, और हमारे में काफी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनका जो कीपैड है ऑपरेट करना नहीं जानते, तो अगर आपके पास फीचर फोन हो और आप ऑडियो से आप कमांड दे सकते हो और यूपीआई के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, तो यूपीआई जो है स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों में उपलब्ध है।
तो अनिल जी, जैसा भी आप बता रहे थे कि अब क्रेडिट कार्ड भी जुड़ जाएगा, वो भी यूपीआई पे आ जाएगा, तो अभी डेबिट कार्ड की जो गतिविधियां हैं वो यूपीआई पे आ गई, फिर क्रेडिट कार्ड की भी आ जाएंगी, ऐसे में क्या इस बात का खतरा नहीं है कि जो कोर बैंकिंग है वो कहीं पीछे चली जाएगी या बैंकिंग की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के हाथों में ही सब कुछ होगा?
नहीं अमरीश जी, इसको बाहर से तो यूं लगता है, लेकिन आप देखिए हमारा जो यूपीआई का यूनिक आईडी है वो बैंकों के थ्रू ही है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको मैं अपने यूपीआई आईडी, जो मेरे आधार से लिंक्ड है, उसके थ्रू मैं लिंक करा रहा हूं, एंड उसका हैंडशेक हो रहा है। जैसे कोई भी प्राइवेट में कोई चला रहा हो फिनटेक प्लेटफॉर्म, हजारों हैं इंडिया में, लेकिन 3-4 हैं जो डोमिनेट किया हुआ है यूपीआई में, तो आप उनसे लिंक करो, तो लेकिन अंत में बैंक के पास ही आता है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए। तो जो हम कहते हैं ना पीयर टू पीयर, जैसे अमरीश जी और अनिल जी, हम दोनों आपस में पे कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू ही सेटल होता है, बाद में आपके बैंक और मेरे बैंक के बीच में सेटल होता है। लेकिन फ्रीडम ये है कि हम दोनों को अपने अपने बैंक में जाके नहीं करना, हम अपने फोन से एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो बैंक अभी खतरा नहीं है, लेकिन बैंकों को चौकन्ना रहना है, क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ जा रहा है, तो जितनी जल्दी वो भी इस इनोवेशन की दौड़ में लग जाए उतना अच्छा है, लेकिन अभी तक तो उनका कोई खतरा नहीं है।
अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, सौदे बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर महीने हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, वार्षिक आधार पर भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, और हम समझते हैं कि ये इसी तरह से आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और हमारे विकास की रफ्तार तेज होगी।
अभी आप सुन रहे थे यूपीआई भुगतान में निरंतर वृद्धि पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।